الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا بیان جاری ہے. آج کچھ مزید اولاد کے حقوق بیان کریں گے. اولاد کے حقوق میں سے ایک حق جو آخری بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اولاد بولنے کے قابل ہو, جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھایا جائے تاکہ یہ لفظ اس کی زبان پہ جاری ہو اور اس کے دل میں اتر جائے. اس کے بعد ایک اور حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان محبت کے اظہار میں برابری کی جائے. محبت کرنے میں برابری مشکل ہے کیونکہ بعض اوقات ایک فطری طبعی طور پہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جیسے بعض اوقات جو پہلا بیٹا پیدا ہو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے, بعض اوقات جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے. تو ایک ہے کہ انسان کی اپنی کیفیت, وہ اس کے اختیار میں نہیں, لیکن ایک ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا. اظہار اپنے اختیار میں ہے. اب اگر آدمی ایک بچے کو بہت زیادہ پیار کرے, بہت زیادہ کھلائے پلائے ساتھ لگائے اور سب کچھ کرے اور دوسرے بچے کو ذرا دور دور رکھے تو یہ شے بندے کے اختیار میں ہے اور یوں کرنا مناسب نہیں, بلکہ بعض صورتوں کے اندر گناہ کی صورت بھی بن جاتی ہے جبکہ کسی لین دین کا معاملہ ہو. جیسے بچوں میں کوئی شے تقسیم کرنی ہے تو ایک تو فرق ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے کہ چھوٹے بچے کو اس کے مطابق چیز دی جائے گی, بڑے بچے کو اس کے مطابق. چھوٹے بچے کو اگر کھلونا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے کو بھی کھلونا ہی لا کے دے دیں, اور بڑے کو اگر اس کے مطابق کوئی چیز دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی اسی طرح کی چیز دے دیں. تو ایک ڈفرینس تو یہ ہوتا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. ایک ہوتا ہے کہ تحائف وغیرہ دینا کہ جو نارملی سب کے لیے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک کو دینا دوسرے کو محروم کرنا یہ شرعی اعتبار سے گناہ ہو جاتا ہے جبکہ شرعی وجہ ترجیح وہاں پر موجود نہ ہو. تو یہ تو بہرحال ایک جنرل میں نے اس حوالے سے بات کی ہے, لیکن جو اولاد کے درمیان محبت کے اظہار کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کی ضرورت, اہمیت اور افادیت. ایک بچے سے بہت زیادہ لاڈ پیار محبت ہو تو بقیہ کی فیلنگز کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. تو لہذا یہاں پر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ایک حدیث مبارک بھی ہے, فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, انصاف کرو. یہ نہیں کہ ایک کو بہت زیادہ ترجیح دے دی جائے اور دوسرے کو اگنور کر دیا جائے, اس سے جو ہے وہ اعراض کر دیا جائے. تو بارانی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, یہ حدیث ہے ابن النجار کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی التقبیل, فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, حتیٰ کہ اولاد کو بوسہ دینے میں بھی, حتیٰ کہ اولاد کو بوسہ دینے میں بھی. کہ اگر دو چھوٹے بچے ہیں اور اگر ایک کو پیار کیا اور ایک کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک کو بوسہ دیا اور دوسرا محبت اور شفقت کا منتظر کھڑے کا کھڑا رہ گیا. اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ احساس کمتری اور یا پھر حسد کی طرف لے جائے گا. تو یہاں پر بڑی خوبصورت تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو حتیٰ کہ انہیں بوسہ دینے میں. اچھا, پھر اس کے ساتھ جو اس کے دیگر جو چیزیں بنتی ہیں اس کی وجہ سے, وہی میں نے احساس کمتری, احساس برتری اور جیلسی और इस तरह की जो जज्बात हैं अगर वो छोटी उम्र में पैदा हो जाए तो इनके असरात बड़ी दूर तक जाते हैं। बाज़ों का तो ये भी होता है कि ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बड़े होने के बाद एक बच्चा दूसरे बच्चे पे जुल्म करता है और जब उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि बचपन में क्योंकि इस बच्चे को थोड़ा सा इससे एराज किया गया था, अवॉइड किया गया था, ये बचपन के अपने दिल में कीना रख के बैठा हुआ जिसका बदला बड़ा होने के बाद दे रहा है। और फितरत इंसानी जो है, इंसानी मिजाज जो है, वो इतना पेचीदा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको पूरी तौर पे समझना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा हत्तर इम्कान जो उसके जाहरी सही तरीके होते हैं उन्हीं को इख्तियार करना चाहिए। तो ये औलाद के हक के एतबार से कि औलाद के साथ लेन देन में और इजहार मोहब्बत में अदल किया जाए, बराबरी की जाए। औलाद के हुकूक में से एक और हक, और ये बड़ा ही ज़रूरी, बड़ा ही अहम है, और वो ये है कि औलाद के दीन की फिक्र की जाए। औलाद की दुनिया की फिक्र तो सारे ही करते हैं, ऐसा तो शायद ही होगा जिसे अपनी औलाद की दुनिया की फिक्र ना हो। अगर उनके लिए घर बना सकता है तो घर बनाता है, उनके लिए अच्छी नौकरी अगर करवा सकता है तो उसकी कोशिश करता है, उन्हें को बिजनेस करवा सकता है तो वो उनको करवा के देता है। तो जो दुनियावी मुस्तकबिल है इसके लिए तो शायद ही किसी को बोलना पड़े कि भाई आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दें। उसकी ख्वाहिश के एतबार से तो बहरहाल वो उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना ही चाहता है, ज़्यादा मामला दीन का होता है कि दीन के एतबार से अपनी औलाद का दीनी मुस्तकबिल बचाने की कितनी कोशिश की। तो अब ये जो पॉइंट है इसकी अहमियत कुरान में, हदीस में बड़ी कसरत से और बड़ी ताकीद के साथ बयान की गई है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस आग से अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो अब घर वालों में बीवी भी है और बच्चे भी दाखिल हैं। तो ये बड़ा मरकजी और बड़ा बुनियादी हुक्म है कि अपने बच्चों की तरबियत में दीन का जो उनसुर है, दीन का फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे बतौर हदफ के सामने रखा जाए और उसे सही करने और उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, ये औलाद की तरबियत के हवाले से एक और जिहत को बयान करती है और वो कितनी अहम है आप उसके अल्फाज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अल्फाज किस हद तक माँ बाप की जिम्मेदारी को बयान करते हैं। मुस्लिम की रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, फरमाया कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। दीन इस्लाम के कबूल करने और अमल करने की सलाहियत पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत फअबावाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, फरमाया कि फिर ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसे या तो यहूदी बना देते हैं या उसे ईसाई बना देते हैं और या उसे मजूसी आग की पूजा करने वाले बना देते हैं। बच्चा जो पैदा हुआ फितरत पे पैदा हुआ, उसके अंदर ईमान और इस्लाम की बुनियाद और जड़ मौजूद है कि मारिफत इलाही की सलाहियत, इस्लाम ईमान कबूल करने की सलाहियत ये उसमें होती है। तो फरमाया कि हर बच्चा, हर पैदा होने वाला फितरत पे पैदा होता है। अब उसके माँ बाप, सिर्फ बाप नहीं और सिर्फ माँ नहीं, फअबावाहु, बाप और माँ दोनों, फरमाया कि ये वो होते हैं जो या तो उसे ईसाई बना देते हैं या उसे यहूदी बना देते हैं या उसे मजूसी बना देते हैं। तो इससे आप समझ लें कि बच्चे के बिगाड़ और उसके सुधार दोनों के अंदर माँ बाप का किरदार कितना अहमियत रखता है और वो कैसा रोल प्ले करते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो हमें नज़र आते हैं कि जनाब ये बच्चे बड़े सुलझे हुए हैं, तो क्या वो पैदाइशी सुलझे हुए होते हैं? भाई पैदाइशी तो नॉर्मल ही होते हैं, वो सुलझे हुए होते हैं क्योंकि माँ बाप ने सुलझाया होता है। बच्चे बड़े नमाजी होते हैं, बड़े अदब आदाब और तमीज़ वाले होते हैं, क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने सिखाई होती। और दूसरी तरफ क्या होता है, बच्चे परले दर्जे के बदतमीज़ होते हैं, उजड़ जाहिल होते हैं, कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती। शोर शराबा, लड़ाई मार कुटाई, गाली गलोच, ऊट पटांग, बेहूदगी और शरारतें और शरंगेजी और बस तंग करना और ईज़ा पहुंचाना, इसमें होते हैं। तो क्या ये बच्चे पैदाइशी ऐसे थे? ये माँ बाप ने किए होते अक्सर बेशतर, कहीं कहीं इस्तिस्ना भी है, लेकिन अक्सर बेशतर क्या है कि माँ बाप ने तरबियत की नहीं, ये नहीं कि शरारतें सिखाई उनको, ये कि उनकी तरबियत नहीं की। जब उनको समझाया नहीं, उनको सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं, तो बच्चों को कहाँ से इल्हाम हो जाएगा क्या? तो माँ बाप उसमें मुजरिम होते हैं। जो बिगड़े हुए बच्चों के पीछे जो अक्सर किरदार होता है, वो उनके माँ बाप का होता है। और अफसोस कि हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में, मैं पाकिस्तान के अतबार से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो सुधार का पहलू इतना सा है, बिगाड़ का पहलू इतना बड़ा है। बच्चों को कुछ भी सिखा देंगे तमीज़ नहीं सिखाते, बच्चों को कुछ भी सिखा देंगे उसको मैनर्स नहीं सिखाते, उसको एटिकेट्स नहीं सिखाते, उसको कोई इंसान बनना नहीं सिखाते, उसको इस्लामी आदाब नहीं सिखाते, उसको शोर से नहीं रोकते, उसको शरारतों से नहीं रोकते, उसको पड़ोसियों के हकूक नहीं बताते। तो अब बच्चा भी जो है ना, वो लगा होता है तंग करने पे, और अब्बा हुजूर उसके साथ जुड़े हुए होते, माँ बाप सारे मिलके लगे होते पड़ोसियों को तंग करने, और साथ में जो है वो गली मोहल्ले वालों को तंग करने, और इसी तरह गुफ्तगू के अंदर भी तूतकार और बदतमीजी होती है, और बच्चे वही वाली चीज़ सीख कर बड़े होते हैं और वो भी वही करते हैं। और ये इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी अफसोसनाक बात है कि बाज़ औक़ात हैरत होती है कि इस्लामी मुआशरे में, यानी इस्लामी मुआशरा नहीं, मुसलमानों के मुआशरे में, इस्लामी मुआशरा हो तो कुछ और ही हो, मुसलमानों के मुआशरे में, मुसलमान कहलाने वालों के मुआशरे के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये जहालत पाई जाती है। जिनके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो है ही वो जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। फरमाया मुसलमान तो है ही वो जिसकी जबान और जिसके हाथ से, हरकतों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो मुसलमान की डेफिनेशन ये बयान की कि दूसरे उसके हाथ और जबान से सलामत रहते हैं। और यहां हाल यह है कि शायद मुसलमान की अमली तारीफ के उलट हो चुकी है कि हरकतों से पता चल जाता है कि यार ये अपना ही होगा वो, क्यों? इसलिए कि उसकी हरकतें ऐसी। और अगर कोई बहुत अच्छी अंदाज में मुस्कुरा के मिले और बड़े तरीके से बात करे और बड़ी तवज्जो से बात सुन ले, तो हम क्या कहते हैं? तो यार ये तो अंग्रेज लगता है बिल्कुल। अच्छा अंदाज, उसलूब, कलाम, मिलनसारी देखें तो हम कहते हैं कि यार अंग्रेजों जैसा तर्ज अमल है। और बुरा देखें तो हम कहते हैं अपना ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो पहचान बयान की थी वो हमारी बजाय गैरों में पाई गई और हमारे अंदर उसके उलट पाई गए। और प्रैक्टिकली मुसलमान वो हो गया कि जिसके ना हाथ से दूसरा सलामत रहे ना जबान से दूसरा सलामत रहे, मजहबी हो गैर मजहबी हो, लेकिन लोगों के हुकूक अदा करने के अंदर शायद करीब करीब बराबरी होते। कुछ खौफ खुदा वाले, कुछ दीन को सही समझने वाले, जिनको ये पता है कि दीन जो है ना चार चीज़ों का नाम नहीं है, दीन जो है वो हुकूकुल्ला के साथ हुकूकुल इबाद का नाम भी है, दीन जो है वो जाहिर के साथ बातिन का नाम भी है, दीन जो है वो इबादत के साथ अखलाकियात का नाम भी है, जिनको ये पता है तो उनसे तो इसकी तवक्को है कि वो इस्लाम की असल सूरत पेश करते होंगे। वरना किसी ने एक छोटी सी चीज़ को दीन बनाया हुआ है, किसी ने दूसरी छोटी सी चीज़ को दीन के तौर पे पकड़ा हुआ है, है हाजी साहब लेकिन सारी दुनिया को तंग किया हुआ है, है मस्जिद का चेयरमैन और सदर और मस्जिद के अंदर किसी को सुख से बैठने नहीं देता, और है जो है वो बड़ा ज़ाहरी एतबार से पर तस्बीह करने वाला लेकिन अखलाक इतने बदतरीन किस्म के उसके हैं, और पड़ोसियों के साथ हर वक्त उसकी लड़ाई चलती रहती है। तो ये क्या, ये सारी की सारी चीज़ों के पीछे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे घरों के अंदर तरबियत ख़त्म है। और औलाद की तरबियत, ये औलाद के हुकूक में से बुनियादी तरीन चीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बड़ी खूबसूरत हदीस अर्ज करता हूँ, फरमाया कि औलाद के बाप माँ बाप की तरफ से औलाद को जो बेहतरीन तोहफा दिया जाता है वो उसे अच्छे आदाब सिखाना है, मैनर्स ऑफ द लाइफ, एटिकेट्स ऑफ द लाइफ, ये सबसे फरमाया कि बेहतरीन और खूबसूरत तोहफा है। उसके लिए बंगला छोड़ दिया, उसके लिए कार छोड़ दी, लैंड क्रूजर छोड़ दी, उसके लिए जो है कोई बैंक बैलेंस छोड़ दिया, उसके लिए कोई और इस तरह की चीज़ें छोड़ दी, उनकी इफादियत है, वो भी अपनी जगह सही है और मुफीद है अगर हलाल की है, लेकिन इन सारी चीज़ों से बेहतरीन तोहफा जो है वो उसकी अच्छी तरबियत है। बच्चा हर इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करे, इंसान होना हो। माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चा इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके आए और इंसानियत के अंदर भले 10/100 नंबर हो उसके। भाई इंसानियत में 100/100 नंबर ले लो, बकिया जो है पेपरों के अंदर भले 33 नंबर लेके पास हो जाओ, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुआशरे में कोई ढंग की चीज़ तो नज़र आए ना। ट्रैफिक की सेंस है, ना रोड की सेंस है, ना गली मोहल्ले की सेंस है, ना रात को सोने का जो ना तरीका पता है, ना पड़ोसियों के हवाले से कुछ पता है। जब दिल किया, जिस वक्त दिल किया, शोर शुरू कर दिया, अच्छी खासी जगह पे बैठे हुए मोबाइल फ़ोन चलाया, चलो जी अब शोर शराबे के अंदर है। मैंने प्लेन के अंदर देखा, जहाज़ के अंदर तो तब भी पहले लगता था कि कुछ माकूल लोग बैठते होंगे, अब तो ये हो गया कि जहाज़ के अंदर बैठा हुआ भी कोई बंदा जो है वीडियो ऊंची आवाज़ से लगाई गाने सुन रहा है, ऊंची आवाज़ से कुछ और सुन रहा है। दूसरे बंदे ने मुताला करना है, दूसरे बंदे ने कोई अल्लाह रसूल की याद करना है, कोई जिक्र अस्कार करना, तिलावत करनी, कुछ भी करना, लेकिन परवाही कोई नहीं। एक बंदा बैठा हुआ, दो बंदे अगली सीट पे, दो बंदे पिछली सीट पे, दो बंदे लेफ्ट सीट पे बैठे हुए हैं, और हर बंदा अपनी जो है ना वो रंग बिरंगी चीज़ें जो है वो लगा के बैठा हुआ। बच्चे साथ बैठे हुए गेमें खेल रहे हैं और पूरा डजन डजन हो रही है कि जैसे पत्नी की जंग लग गई है जहाज के अंदर। तो अब वो क्या हो रहा है, माँ बाप साथ बैठे हुए, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि माँ बाप को इतनी तौफीक हो जाए कि उस बच्चे को समझाएं। तो जहां पर भी हमारे यहाँ यूं कह ले कि ये जो औलाद की तरबियत वाला फैक्टर है, जो औलाद के बुनियादी हुकूक में से है, ये यूं कह ले कि ऐसा फरामोश किया हुआ है, तालीम आ जाए बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो होता है कि भाई बच्चे को ना खाना पीना रोजगार इसका चल जाए, हलाल हो हराम हो उसका जरा फर्क थोड़ा है, लेकिन चले हलाल की फिक्र भी होगी तो भाई ये होगा कि उसका खाना पीना अच्छा, ढंग की रोटी चलती रहे, कमाता रहे अच्छा खासा, घर अपना होना चाहिए, गाड़ी हो जाए, बस इन तीन से आगे तो कदम रखने का सोचते भी नहीं कि भाई ये अल्लाह रसूल का कितना फरमाबरदार है, ये दीनदार कितना है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, तिलावत की आदत है यानी, जिक्र इलाही करता है यानी, दुरूद पाक पढ़ता है, खौफ खुदा है यानी, हलाल हराम की फिक्र है यानी, ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी तरबियत किसने करनी। और फिर इससे आगे औलाद को ये नहीं समझाया जाता कि लोगों के हुकूक क्या होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, बीवी के हुकूक क्या होते हैं। ये तो एक नया चैप्टर है, अगर मैं इस पर कलाम करूँ तो ये एक पूरी दुनिया बन जाएगी कि वो कौन से माँ बाप हैं जो अपने बेटे को, बेटी को नहीं, बेटी को अक्सर व बेशतर सिखा रही होती है माएँ कि अपने घर में जाके यूं करना यूं करना, क्योंकि उनको डर खौफ होता बेचारियों को। तो लिहाजा बेटी को तो सिखाने वाले हैं, लेकिन क्या बेटे को सिखाने वाला भी कभी सुना है आपने? या जरा अपने ऊपर गौर कर लें कि कभी अपने बेटे को भी सिखाया कि भाई तुम्हारी दुल्हन आने वाली है, तुम्हारी बीवी आएगी, उसके हुकूक हैं, उसके हुकूक पूरे करने हैं, जुल्म नहीं करना, उसको बुरा भला नहीं कहना, उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझना है, उससे अच्छा सलूक करना है, क्या इस तरह का सुना है कभी? कोई होंगे, चंद एक होंगे ऐसे भी दीनदार खौफे खुदा वाले अच्छे लोग ऐसे होंगे, लेकिन कितने? 10,000 में अगर दो भी मिल जाए ना तो गनीमत है। तो है ही नहीं कि औलाद को ये सिखाया जाए कि बेटे को ये सिखाएं कि जो तुम्हारी बीवी लेके आ रहे हैं तो वो किसी की बेटी है, उसके हुकूक है। तो ये है औलाद की तरबियत ना होना, बचपन में उसको दीन नहीं सिखाया, थोड़ा सा बड़ा होके उसको आदाब ज़िंदगी नहीं सिखाए, शादी के वक्त उसको बीवी के साथ सलूक नहीं सिखाया, और उसके बाद हुए घर में फसाद। अब क्या है, फ़अबा वाह यू हब्विदान ही और यू नस्सीदान ही और यू मज्जिसान ही, कि बच्चा तो सही पैदा हुआ था, ये माँ बाप ने उसको ऐसा बना दिया, उसको यहूदी बना दिया, उसको नसरानी बना दिया, उसको मजूसी बना दिया, उसको बद अखलाक बना दिया, उसको बदतमीज़ बना दिया, उसको लफंगा बना दिया। तो ये है माँ बाप का किरदार कि जिन्होंने या तरबियत गलत की या सही की नहीं, और बच्चे ने खुद गलत सीख लिया मुआशरे से। तो लिहाजा औलाद की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और यकीन करें कि ईच एंड एवरी थिंग, एक एक शय जो मैं बयान कर रहा हूं, हर शय के ऊपर यूं कह ले एक एक लाख मिसालें बयान हो सकती हैं। बेनमाजी हमारे माशरे में इतने ज्यादा हैं, क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने नमाज की तरगीब नहीं दी, उनको नमाज पे लगाया नहीं। पड़ोसियों के हुकूक अदा ना करने वाले, शोर शराबा करने वाले, पड़ोसियों को तंग करने वाले लाखों करोड़ों में होंगे, क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने तरबियत नहीं की। بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والے لاکھوں میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کبھی بولا ہی نہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں مثالیں ہوں گی ہمارے گھروں میں, ہمارے دائیں بائیں ہر طرف یہ پائی جاتی. دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس آگ سے کیسے بچانا ہے؟ اولاد کفر و شرک میں نہ پڑے, اولاد بدعات کا شکار نہ ہو, اولاد بدکاری اور حرام کاریوں کا شکار نہ ہو, اولاد حرام خوری میں نہ جائے, اولاد فرائض ادا کرنے والی ہو, واجبات ادا کرنے والی ہو, دوسروں کا دل دکھانے والی نہ ہو, گالیاں دینے والی نہ ہو, فحش سننے بولنے والی نہ ہو, فحش دیکھنے والی نہ ہو. ان ساری چیزوں سے بچا کر اسے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوتے. یہ ہے قرآن کی آیت. حدیث مبارک سبحان, اچھا ایک اور آیت مبارک عرض کرتا ہوں. اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, فرمایا وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے, خاموش نہیں رہتے تھے کہ اولاد جیسے مرضی کرتی رہے, بیوی جیسے مرضی کرتی رہے. فرمایا کہ حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. تو بولنا پڑتا ہے, دل جلانے سے نہیں ہوتا کام, بولنا ہوتا ہے کہ یہ کرو. ہاں اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے, تفہیم آنا سمجھانے کا ہونا چاہیے, جو سمجھانے کے تقاضے ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ, لیکن کچھ سمجھائیں تو صحیح, کچھ بتائیں تو صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز ادا فرماتے تھے, لیکن کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کو حکم دو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ حکم ہمیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. تو اب آپ غور کر لیں کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو نماز کا کتنا حکم دیا جاتا ہے. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس کے اوپر باقاعدہ. فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو فرمایا سختی کے ساتھ پڑھاؤ. تو یہ کیا ہے؟ اولاد کو ان چیزوں پہ لگانا ہے, اس طرف لے کے آنا ہے. اسی طرح ایمان ہے, ایمانیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے, سبحان اللہ, ہمارے لیے اس میں کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کرے. آیت مبارکہ دیکھی, فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, فرمایا اور اسی کی وصیت کی, اسی کی وصیت کی, اسی کی تاکید کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وصیت فرمائی, تاکید کی, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. کیا فرمایا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اے میرے بیٹو, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے, دین اسلام کو چن لیا ہے. فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حالت اسلام میں موت آئے. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے. اور کیا ہے؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنا. خدا نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے, اسلام, ایمان. تمہیں حالت ایمان میں موت آئے, معاذ اللہ حالت کفر میں نہ آئے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ہمارے لیے بھی وہی تعلیم کہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت یہاں تک کہ وصیت, کہ جو انسان کی یوں کہہ لیں کہ ایک زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور ایک زندگی کی اہم ترین چیز کا بیان ہوتا ہے, وہاں بھی اللہ کے نبی اپنی اولاد کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام منتخب کیا ہے, تو حالت اسلام اور حالت ایمان کے اندر ہی تمہیں موت آئے. تو اب غور کریں کہ ذرا ہم अपनी औलाद को दीन ईमान के बारे में कितना बताते हैं, कितना समझाते हैं, क्या उनसे बात करते हैं। तो ये जो है वो एक दो सिर्फ आयतें और रिवायतें मैंने इस हवाले से बयान की। अच्छा, अब बात ये है कि भी तरबियत करें कैसे, तरबियत करें कैसे, क्योंकि औलाद की तरबियत, औलाद की तरबियत मेरे ख्याल में ऐसा लफ्ज नहीं है जो अजनबी हो, तो अननोन वर्ड नहीं है ये। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि औलाद की तरबियत एक लफ्ज़ है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और कहीं कहीं नज़र से गुजर जाता है, हर छोटे बड़े को पता है औलाद की तरबियत। लेकिन तरीक़ाकार क्या है, कैसे करें, तो ये थोड़ा सा ज़रा अमली तौर पे समझने की चीज़ है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, तरबियत का एक उसूल मैं अर्ज़ कर दूँ जो 90% चीज़ों में सादिक आता है, यानी कि 100 चीज़ों की तरबियत करनी हो उनमें 90 चीज़ों में तरबियत का तरीका ये होता है, 10 के अंदर तरबियत का तरीका दूसरा है, 90 के अंदर वो है जो अभी मैं बयान करूँगा। 10 क्या है, 100 में से 10 चीज़ों में तरबियत तो ये है कि आप बोल दें बेटा ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, आपने बोल दिया और आपने वो आपका बोलना तरबियत कहलाएगा। 90% चीज़ों में बच्चों की तरबियत बोलने से नहीं होती, खुद करने से और बच्चों से करवाने से होती, खुद करने से और बच्चों से करवाने से होती। बोलने से चंद चीज़ें हैं जो बच्चे सीख के अमल शुरू कर देते हैं, असल जो है वो आपका खुद करना और बच्चे को करवाना होता है। आप नमाज की तरबियत यूं करना चाहें ना, बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ा करो, तो हो ही नमाज, 10% उम्मीद है कि बच्चा नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब आप खुद अजान के साथ ही मस्जिद में हैं, माँ अजान के साथ मुसल्ले पे खड़ी है और उसके साथ बच्चे का हाथ पकड़ के साथ मुसल्ले पे खड़ा किया, या बच्चे को साथ लेके मस्जिद में गए हैं, ये दो चीज़ें जमा करेंगे तो 90% उम्मीद है बच्चा नमाजी बनेगा। तो बच्चों को जिस चीज़ की तरबियत करनी है, जिस चीज़ की तरबियत उनको देनी है, वो खुद करें और उनसे करवाएं, तो बच्चे खुद ब खुद उस अमल पे आ जाएंगे और जब कर कर के सीखेंगे तो उनके मिजाज का ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि फिर कभी जिंदगी में उनसे निकल नहीं सकेगा। अब उसके लिए क्या करें, मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो ये है, बच्चा सो के उठे ना तो उसे सोकर उठते साथ ही अल्लाह का नाम लेना, कलिमा तय्यबा पढ़ना और सोकर उठने की दुआ पढ़ना ये सिखाना। जितना छोटा बच्चा है जो अभी 2-4 लफ्ज़ ही पढ़ सकता है तो उसको सोने से उठने की दुआ तो याद करना मुश्किल है, तो सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह ही बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, ताकि उठते साथ ही रब को याद करने की सोच बन जाए। सोने से पहले आखिरी कलाम अल्लाह का नाम, ये आप करें बच्चे से करवाएं, तो अब ये उसकी आदत, उसके मिजाज, उसकी फितरत के अंदर ही दाखिल होती जाएगी, एक बात। दूसरी बात, उसे सिखाएं कि उठते साथ ही माँ बाप को सलाम करें। माँ बाप को सलाम करने से माँ बाप की मोहब्बत दिल में बैठती है, माँ बाप के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत बढ़ती है। सलाम करना इस्लाम का शिआर है, इस्लाम की निशानी है, सलाम फैलाने का हुक्म है, सलाम को आम करो। तो बच्चा जब माँ बाप को यूँ सलाम करता है तो उससे ये आदत डिवेलप होती है और सलाम फैलाने की आदत बनती है। तीसरी बात, बच्चे को वुजू करना सिखाएं कि जब वो वुजू के काबिल हो जाए तो उसे वुजू करना सिखाएं, फिर उसे मुसल्ले पे खड़ा करें, अभी उसको नमाज नहीं भी आती वैसे साथ खड़ा कर लें। हम मस्जिद में ले जाने के अहकाम जुदा हो जाते हैं, वो तो मस्जिद की समझ हो तभी ले जा सकते हैं, लेकिन उसे मुसल्ला बिछाना, मुसल्ला उठाना, मुसल्ले पे बैठना, हाथ में तस्बीह लेना, बच्ची है तो सर पे दुपट्टा, लड़का है तो सर पे टोपी, तो इस तरह की चीज़ों पे उसको लाएं कि जिससे उसको ये पता चले कि मैं ये हूँ, मेरा दीन ये है, मेरा घर ये है, मेरी ज़िंदगी ये है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें उस बचपन के अंदर ही आप उसकी आदत में शामिल कर देंगे तो ये पूरी ज़िंदगी दीन के साथ रहेगा, रब की तरफ मुतवज्जे रहेगा, वरना तो आगे जाके जैसा माहौल है फिर वो आपको पता ही है। तो लिहाजा उसकी बुनियाद के अंदर दीन, अल्लाह रसूल का नाम, अल्लाह रसूल की मोहब्बत डाल दें। अच्छा, फिर उसके साथ चंद एक और चीज़ें कि जो बच्चे को जिसका आदि बनाया जाए वो है कि बच्चे को थोड़ा बहुत जिक्र और तस्बीह जो है इस पर लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप तस्बीह हाथ में दे दे तो अच्छा है, कोई वो नहीं है, لیکن یہ ہے کہ بچہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ والے الفاظ جو ہے نا، یہ تھوڑے بہت دن میں پڑھتا رہے تاکہ اس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو. اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ 6-7 سال کا ہو جائے تو اتنے بچے آج کے زمانے میں جو دعائیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں نا، سواری کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، تو اس طرح کی دعائیں بچے یاد کر لیتے ہیں. بچوں کو دعائیں یاد کروا کر پڑھوائیں، یاد کروا کے چھوڑ نہ دیں، یاد کروا کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوئی کام کریں تو اس سے پہلے جو پڑھنے کی دعا ہے وہ خود پڑھ لیں. میری ایک چھوٹی بھانجی ہے، 3 سال کی ہے، اس کو جب بائک کے اوپر بٹھاتے ہیں تو آٹو کے اوپر جو ہے سواری کی دعا پڑھتی ہے، آٹو کے اوپر، یعنی آٹو سے مراد ہے کہ آٹومیٹک، کہ آپ اس کو جیسے بٹھائیں گے نا تو ساد سبحان الذی سخر لنا ھذا، آپ اتاریں دوبارہ بٹھائیں ساد سبحان الذی سخر لنا ھذا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کو اتنی پریکٹس کروائی ہے کہ اب اس کو یہ ہے کہ بھائی جیسے اوپر رکھنا ہے نا قدم، بیٹھنا ہے تو دعا پڑھنی. یہ ہوتا ہے کہ سکھانے کے ساتھ کروانا ہوتا ہے. تو صرف بولے نہیں، آپ عمل کروائیں. کھانے سے پہلے کی دعا آپ پڑھیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ پڑھیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی جگہ میں کھانے پہ گیا تو ان کی جو ہے وہ چھوٹا بچہ یا بچی تھی، میں 3-4 سال کی ہوگی. تو اب جیسے میں نے کھانا شروع کیا تو میں نے اپنے حساب سے دعا پڑھ لی، آہستہ پڑھ لی. تو میں نے جیسے کھانے کے وہ لکمے کو ہاتھ لگایا نا تو وہ بچے یا بچی جو تھی اس نے فوراً کہہ دیا، بابا مفتی صاحب نے دعا تو پڑھی نہیں، دعا تو پڑھی نہیں انہوں نے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، انہوں نے پڑھ لی، آہستہ پڑھی. اچھا آہستہ پڑھ لی، یعنی کہ وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آہستہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. تو یہ ہوتی ہے تربیت، جب آپ بچے کو بار بار کرواتے ہیں تو وہ اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا بچوں سے وہ کام کروائیں. اچھا اسی طرح یہ ذکر الہی، یہ دعائیں یاد کرنا، اچھا اسی طرح بچے کو جنت کے بارے میں بتائیں. کیونکہ لالچ، رغبت، حرص، یہ ہر انسان میں فطری ہوتی ہے، کھانے پینے کی، اچھے لباس کی، اور رنگ برنگے نعمتوں کی، اچھے اچھے گھروں کی. تو اب آپ بچے کے دل میں ہی ڈال دیں. بچے کو جب آپ بتائیں گے نا بیٹا جنت کے اندر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور پانی کی نہریں، اور وہاں پر سونے چاندی کے گھر بنے ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت باغات ہوں گے، ایسے جو ہے وہ مخملی چیزیں ہوں گی، اتنا خوبصورت لباس ہوگا، جب آپ بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر بڑا شوق پیدا ہوتا ہے. کیونکہ بڑوں سے زیادہ تو بچوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کی رغبت ہوتی ہے نا کہ اچھا اتنا شاید ہوگا وہاں پر، پیتے ہی رہیں گے. تو بچوں کو اپنا انجوائمنٹ کا ہوتا ہے. تو اب بچے کے دل میں جنت کا شوق پیدا کریں اور ساتھ بتا دیں کہ بیٹا جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، دوسرے بچوں سے پیار سے بات کرنی ہے، مسکرا کے بات کرنی ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی. تو یہ جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ہیں، یہ بیان کریں. ساتھ میں آپ جنت کا بیان کریں تو بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے اچھی عادات، اچھی خصلتیں اور خوبیاں یہ پیدا ہو جائیں گی، ایک جنت کی رغبت پیدا ہو جائے گی، ان کا ایمان بھی صحیح رہے گا. اور اسی طرح جہنم کے بارے میں تھوڑا سا ذرا لمٹ کے ساتھ، کیونکہ جہنم کا بہت زیادہ خوف دلانا جو بچے کا ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات تھوڑا سا اس کا امپیکٹ سخت ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اعتبار سے بیٹا جہنم بڑی سخت جگہ ہے، وہاں سزائیں ہیں، تو اس طرح کا، تو جہنم کا تذکرہ تھوڑا سا عمر کو سامنے رکھتے ہوئے اور جنت کا تذکرہ بھی عمر کو لازمی بات ہے سامنے رکھتے ہوئے. اب بچے کو بولیں گے بیٹا جنت میں شراب ہوگی تو تھوڑا سا اس کی ترکیب آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس لیول کی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے کی جائے. تو یہ ہے جنت جہنم کی بات کرنا، اس کے بارے میں ترغیب دینا. تو یہ کام جو ہے یہ اگر بچوں کے ساتھ کیے جائیں تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی ہی اہم چیز، وہ بھی اسی میں داخل ہے، بچوں کی تربیت میں داخل ہے، وہ ہے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، سارے نبیوں کی محبت، اور صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء کی محبت ڈالے. اللہ کی محبت اصل الاصول، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بھی اصل الاصول. कि सरकार की मोहब्बत ही दीन है, वही ईमान है, वही जान ईमान है, वही रूह ईमान है। सहाबा किराम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और नबी पाक इस्लाम की नस्बत की वजह से हर सहाबी की इज्जत, तकरीम, मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ है। अहले बैत की मोहब्बत, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो अहले बैत की मोहब्बत सिखाने का फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद जो हज़रत सय्यदा फ़ातिमा से और हज़रत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे वो हमें पता है, तो लिहाजा उनकी मोहब्बत, सादात किराम की तज़ीम, वो भी इसी में शामिल है। इसी तरह औलिया किराम की मोहब्बत, गौसे पाक हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, बाबा फ़रीद हैं, दाता साहब हैं, और जितने भी औलिया किराम हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, तो उनकी मोहब्बत जो है वो भी बच्चों के दिल में डालें। इसी तरह उलमाए दीन की मोहब्बत, उलमाए दीन की मोहब्बत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उलमा की मोहब्बत नहीं होगी तो ये माद अल्लाह ये एक शय कहीं बकिया चीज़ों को तबाह ना कर दें। क्योंकि आज के ज़माने में हो ये रहा है कि बहुत से लोग अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बातें बड़ी करते हैं लेकिन उलमा से बुग्ज़ निकालते हैं, और उलमा से बुग्ज़ का नतीजा असल क्या होता है कि शरीयत से दूरी, और शरीयत से दूरी खुदा से दूरी। तो अल्टीमेटली वो सारे का सारा सिस्टम ही जरा मिलियामेट हो जाता है। तो जो उलमा हक हैं उनकी मोहब्बत और उनकी ताज़ीम का कहा जाए, करवाई जाए। अच्छा, अब ये कैसे हो? इसका तरीका ये होता है कि आपकी अपनी ज़बान पर इन हस्तियों का तज़किरा कितना है, आपकी अपनी ज़बान पे अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल की बातें, सहाबा की, अहले बैत की, उलमा की, औलिया की बातें कितनी हैं। तो जब आप बात करेंगे तो उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि बकायदा जिसे कहा जाता है ना प्राइम टाइम देना, प्राइम टाइम बच्चों को वो दिया करें। तीसरे नंबर पर क्या है कि जो नज़र न्याज होती है ना, जो ग्यारहवीं शरीफ है, जो किसी बुज़ुर्ग का दिन आता है उसका दिन आता है, तो घर में अहतमाम करें, भले हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ के ऊपर ख़त्म शरीफ दिला दें और बच्चों को ही खिला दें, और होता भी यही है, तो उनको ही खिला दें। लेकिन उनको ये पता हो कि भाई आज हमने जो है वो फ़लाँ वली की न्याज खाई है, आज फ़लाँ वली का दिन था, आज फ़लाँ वली का दिन था, इससे उनकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये यूँ कह लें कि ये सारी तरबियतों की जड़ बुनियाद होती है और सारी तरबियतें इसके अंदर आ जाती हैं। तो लिहाजा बच्चों की तरबियत जो है ये बच्चों का हक है, उनके माँ बाप पे ये हक ज़रूर ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।